हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। रविवार के भगवद गीता के सत्संग में पंचशील गौर निताय प्रचार केंद्र दिल्ली में आपका स्वागत है। ये भगवद गीता जयंती का महीना है, भगवद गीता के प्रकट्य का विशेष ये महीना चल रहा है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा से इस भगवद गीता को मानव कल्याण के लिए भक्ति भाव से जीवों का उद्धार करने के लिए अर्जुन भक्त के माध्यम से भक्ति का प्रचार के लिए दिया है। और हम भाग्य से भगवद गीता के बीच के 6 अध्याय जो भक्ति योग का मुख्य प्रतिपादन करने वाले हैं, उनमें पहले अध्याय 7वां जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग, 7वें अध्याय भगवद गीता का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। तो एक ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, और आध्यात्मिक शास्त्र में ज्ञान का अर्थ होता है जीवात्मा को और शरीर को अलग समझना पहले, और फिर ये समझना कि जीव आत्मा भगवान का अंश है और शरीर प्रकृति का अंश है। पहले इसको ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान का अर्थ है, एक ज्ञान का ये अर्थ है कि अपनी पहचान करना कि मैं जीव आत्मा हूं और शरीर मेरे से अलग है, मैं भगवान का अंश हूं, शरीर प्रकृति का अंश है, और इनका आपस में क्या संबंध है ये भी जानना ज्ञान के अंतर्गत आता है। फिर दूसरे स्तर का ज्ञान होता है, ये इसको आत्मज्ञान बोलते हैं, ये आत्मा का ज्ञान कहलाता है। इसके बाद भगवत ज्ञान, जो ये 7वां अध्याय है, ये तो विशेष रूप से भगवान की महिमा के ज्ञान का वर्णन करता है। इसमें ज्ञान कौन सा है? भगवान के संबंध का ज्ञान है, भगवान की विभूतियों का ज्ञान है, भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान है, भगवान की महानता का ज्ञान है, जो भगवान स्वयं सुना रहे हैं। तो ये दूसरे प्रकार का ज्ञान हो गया। इस ज्ञान का फिर अनुभव करेंगे तो विज्ञान हो जाएगा। इसका मतलब जब हम भगवान की महिमा को जानेंगे तो उसके भक्त बन जाएंगे, तो हमारा भगवान के साथ सेवा करने का संबंध स्थापित हो जाएगा, ये विज्ञान हो जाएगा। तो ये ज्ञान आत्मज्ञान से ऊपर का ज्ञान है 7वें अध्याय का, और ये भगवान अर्जुन को उस वक्त बता रहे हैं जब भगवान ने 6ठे अध्याय में कह दिया कि सारे योगियों में श्रेष्ठ वो है जो मेरा सदा श्रद्धा से चिंतन करता है, ध्यान करता है, स्मरण करता है। तो अर्जुन ने पूछा वो सदा कैसे करेगा, तो भगवान ने कहा मैं आपको उसका ज्ञान और विज्ञान बताता हूं। तो भगवान ने सर्वश्रेष्ठ जो योगियों में भक्त योगी है उसके बारे में 7वें अध्याय में सुनाना शुरू किया। पहले तो भगवान ने ज्ञान में ये बता दिया कि ये बहुत दुर्लभ है, कि हजारों में से कोई एक मुश्किल से जानता है अपने आप को, कोई किसको? आत्मा के ज्ञान को हजारों में कोई एक जानता है, लेकिन ऐसे हजारों आत्मा के ज्ञान को जानने वालों से कोई मुश्किल से एक मुझे जानता है। तो ये जो ज्ञान है 7वें अध्याय का, ये दुर्लभ है, ये आत्मज्ञान से ऊपर के स्तर का ज्ञान है। फिर भगवान उस ज्ञान की पहचान कराते हैं कि भगवान ने एकदम फिर कहा कि एक तो ये सृष्टि का ज्ञान होता है कि दुनिया किस चीज की बनी हुई है। इससे तो 8 चीजें हैं जिनसे ये पूरी प्रकृति का सब कुछ बना हुआ है। पांच महाभूत हैं, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, ये आठ चीजें भिन्न, ये अलग हैं भगवान से, भगवान की शक्ति है, और इस शक्ति को भगवान की बाहर अंग शक्ति कहते हैं या अपराशक्ति कहते हैं। इससे ऊपर भगवान कहते हैं जीव आत्मा मेरी, इससे ऊपर की शक्ति है जो हमारी पहचान है, हम सब जीव आत्माएं हैं। तो जीव आत्मा भगवान की पराशक्ति है। परा का मतलब प्रकृति से परे, लेकिन वो शक्ति तटस्थ कहलाती है, किनारे वाली शक्ति कहलाती है। एक तरफ बाहरंग शक्ति है, एक तरफ अंतरंग शक्ति है, बीच में हम खड़े। तो उपाजी एक बार कहते, समुद्र के किनारे घूमते हुए एक तरफ पानी है, एक तरफ सूखा है, लेकिन बीच में एक जगह है जहाँ पानी कभी ज्यादा ऊपर आता है, कभी थोड़ा पीछे चला जाता है। तो उस जो बीच वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं तट, समुद्र का तट। तो जो आदमी तट पे बैठेगा वो कभी पानी में गीला होगा और कभी पानी से बच जाएगा। ऐसे हमारी स्थिति ये है कि हम तट के ऊपर बैठे हुए हैं, इसलिए भौतिक प्रकृति के संसार सागर की छोलियों में कभी न कभी फंस जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहने लगे, अगर आप थोड़ा सा यहाँ से हट के आगे निकल आओ तो फिर ये समुन्द्र आपको छुएगा नहीं। तो ऐसे तटस्थ शक्ति को भव सागर से बचने के लिए थोड़ा दूर हटके भगवान के निकट चला जाना चाहिए, नहीं तो कभी न कभी पानी ऊपर आएगा ही। और उसके बाद भगवान ने कुछ अपनी विभूतियां बताते हुए ये कहना शुरू कर दिया कि ये सारे संसार का चक्कर तीन गुणों से चलता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से। और इन तीनों गुणों में ऐसे लोग बंधे हुए हैं कि मुझे जानते ही नहीं, मुझे नहीं जानते हैं। इन गुणों के अंतर्गत ऐसे बंधे हुए हैं कि उनको मेरा तो पता ही नहीं लगता है। और फिर भगवान ने कह दिया कि ये जो प्रकृति है जो आपको मुझे जानने नहीं देती है, ये भी मेरी ही शक्ति है, और ये बहुत बड़ी बलवान है, इससे पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। दुर्दया देवी एष गुणमयी मम माया दुर्दया, ये मेरी माया है, ये बहुत बड़ी बलवान है, इससे अपने आप को मुक्त कराना संभव नहीं है। फिर भगवान ने एक रास्ता बता दिया इससे बचने का, ये माम प्रपद्यन्ते माया में तांतरंती थे, जो मेरा शरण ले लेगा वो इस माया से मुक्त हो जाएगा। तब ये प्रश्न उठा तो फिर तो आसान बात है, भगवान का शरण ले ले तो आदमी माया से बच जाएगा, फिर माया का फिर आदमी भगवान का शरण क्यों नहीं देते, अथवा कौन है जो नहीं देते हैं और कौन है जो लेते हैं। तो आज जो हमारा सत्संग है वो इन दो श्लोकों के ऊपर है कि माया प्रबल है, जो भगवान का शरण लेगा वो माया से बचेगा। अब कौन है जो माया कि माया के प्रभाव से निकलना ही नहीं चाहते हैं और भगवान का शरण लेने के लिए तैयार नहीं है, वो चार प्रकार के हैं। और चार प्रकार के वो हैं जो भगवान का शरण लेकर और माया से बचने के लिए प्रयास करते हैं। तो आइए पहला ये श्लोक पढ़ें, पंद्रहवां, जिस श्लोक में चार प्रकार के लोग कभी भी भगवान का शरण लेने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए सदा माया के बंधन में बंधे रहते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माया पहृत ज्ञाना आशुरिं भावमाश्रिता। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न माम, मेरा प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते का मतलब मेरे पांव पकड़ना, परपन्ना तथा प्रपद्यन्ते मतलब पांव पकड़ना, भगवान का शरण लेना। तो मेरा शरण नहीं लेते हैं कौन? न माम, मेरा नहीं प्रपद्यन्ते शरण, मेरा शरण नहीं लेते हैं कौन? पहले पहले उनके लिए एक शब्द बोल दिया दुष्कृति, वो सारे दुष्कृत हैं। कृत का मतलब है कोई अच्छा कार्य करना, और दुष्कृत का मतलब बुद्धि होते हुए भी उल्टा काम करना। तो दुष्कृत का मतलब दुष्ट कार्य, तो ये दुष्कृत कहलाते हैं। ये दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, इनका कार्य दूषित है, दोष युक्त है, और ये भगवान कहते हैं मेरा शरण नहीं लेते हैं। उनमें से पहला है मूढ़ा। मूढ़ा का मतलब मूर्ख होता है, और मूर्ख में जब उदाहरण देते हैं तो फिर गधे का उदाहरण देते हैं। सबसे बड़ा मूर्ख गधा, गधे को मूर्ख महामूर्ख माना जाता है। सुबह से शाम तक सामान उठाता है और मालिक थोड़ा सा घास खिलाता है, जबकि जंगल में मुफ्त का घास पड़ा है, लेकिन वो समझता है कि मुझे घास मिलेगा मालिक से, इसलिए काम करता है, और मालिक मारता भी है लेकिन वो उसी में खुश होता है। तो ये मूर्ख लोग सुबह से शाम तक बस काम करने में लगे रहते हैं, कुछ कमा लेंगे, खाएंगे, थोड़ा सा भोग करेंगे, और नहीं करेंगे तो दुनिया चलेगी नहीं, लेकिन वो कभी भी भगवान के बारे में सुनने को भी तैयार नहीं, उनके पास समय ही नहीं है। उन्होंने अपने लिए इतना काम, अपने आप ही काम अपने लिए बना रखा है, किसी ने उसने कहा नहीं कि तुम ये करो या वो करो, उन्होंने अपने लिए ऐसे काम बना रखे हैं कि उसमें इतने उलझे हुए हैं कि वो सुबह से शाम काम करते हैं और खाते वही दो रोटी हैं, और वो भी कभी खाते हैं और कभी खाने को भी नहीं मिलते, लेकिन फिर भी उसी चक्कर में सुबह से शाम तक चलते रहते हैं। तो ये पहले हैं मूर्ख मूढ़ा। दूसरे हैं नराधमः। नर मतलब मानव और अधम मतलब नीच, मानवों में नीच। अब मानव शरीर मिला है बहुत दुर्लभ, भगवान को जानने के लिए उस काम को छोड़ के वो संसार में फंस गए, उसको नराधम कहते हैं। इसका मतलब जिस काम के लिए आए वो काम तो भूल ही गए। बच्चा जन्म से पहले भगवान को प्रार्थना करता है कि मैं कहां इस अंधकार में पड़ा हूं मलमूत्र के बीच में, मुझे भगवान यहां से मुक्त करो, मैं वचन करता हूं कि आपका भगवान स्मरण करूंगा। लेकिन जैसे ही उसका जन्म हो जाता है वो सब वायदे अपने भूल जाता है, भगवान से किए हुए वचन सब भूल जाता है। तो माँ बाप को बड़ी बुद्धिमानी से बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा तुम्हारे को भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का शरण लेना चाहिए। तो ये संस्कार पहले, ये संस्कार जन्म से ही होना शुरू हो जाते थे। घर में बच्चे का जन्म होता था, ब्राह्मण को बुलाना है, जन्म से पहले गर्भधान संस्कार, गर्भ धारण करने के लिए प्रार्थना करके किसी आत्मा, कोई अच्छा धर्मात्मा लोग हमारे बालक के रूप में आए, ऐसी प्रार्थना की जाती थी। अब वो संस्कार समाप्त हो गया। फिर नामकरण संस्कार, वो भी पंडित जी कहेगा कि नाम इसका रखो गोपाल, बोला नहीं ये तो पुराना नाम हो गया, इसका नाम अभी गुट्टू रखेंगे, अभी गुट्टू रखो मुट्टू रखो, लेकिन गोपाल जैसा अच्छा नाम उसको पसंद नहीं आएगा। तो ये संस्कार वाला भी काम सब रह गया, इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 99.99% लोग संसार में नराधम है, क्योंकि उन लोगों ने कोई भी धार्मिक संस्कार किया ही नहीं है। जो 10 प्रकार के मनुस्मृति में संस्कार है, 16 संस्कार है, विवाह संस्कार है, जो भगवान के सामने यज्ञ करके करना चाहिए वो होटल में होता है। अब जो होटल में विवाह होगा तो उस विवाह से कौन सा सुख घर में आएगा? तो ये तो जब नाम ही उसका संस्कार है तो वो पवित्र स्थान पे होना चाहिए, जहाँ उसका कोई महत्व होना चाहिए, वो तो सब समाप्त हो गया। कोई कन्यादान है, ये इतने उत्तम सारे ऐसे कार्य हैं, हमने उसको ऐसा देखा देखी में पाश्चात संस्कृति के, और उसका सारा असली जो रूप है वो ही बिगाड़ दिया। पंडित जी से न पूछ के आते हैं कि पंडित जी किस वक्त में असल में वो वेदी के ऊपर बैठ के और आप मंत्र पढ़ेंगे? पंडित जी कहेगा गोधूलि का समय है, इसका मतलब गाय शाम को जब आती है उनके पांव से और जो खुर से उड़ी हुई धूली होती है इसका मतलब 6:30 बजे। लेकिन वो तो 6 बजे तो घर से निकलेंगे नहीं, फिर तो घोड़े के आगे नाचेंगे बाजार के बीच में। घोड़े के भगवान के सामने नाचने को शर्म आती है, घोड़े के आगे नाचेंगे और घर से सज के दुनिया देखेगी तुम्हें नाचते हुए, कोई जरूरत है क्या उसकी। और 9 बजे पहुंचेंगे वहां, उसके बाद अगर जाके 9 बजे पंडित जी का टाइम तो गुजर गया 7 बजे वाला। अब पंडित जी बेचारा इतना बंधा हुआ है कि वो कुछ बोलता नहीं है। पुराने जमाने के पंडित कहते 7 बजे अगर बच्चा 7:45 बजे यहाँ नहीं बैठा तो हम तुम्हारा ये लगन नहीं करेंगे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मैं पंडित जी से पूछा एक शादी में, बोला हम ऐसे करते हैं तो दूसरे को बुला लेते हैं, हमारा तो रोजी रोटी यही है। वो तो फंस गया। और वो पंडित जी की रोजी तो छोटी है लेकिन उसकी बड़ी रोजी है, वो 9 बजे बगैर शादी के, शादी अभी शादी हुई नहीं है, वो लड़के लड़की जाके रिसेप्शन में बैठ जाएंगे और सब लोगों से बटरना शुरू कर देंगे। उनको उनका बिजनेस खराब होता है, महाराज का तो छोटा बिजनेस है, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। वो तो अरे बगैर शादी के ऊपर बैठ जाते हैं, अभी शादी हुई नहीं है, उससे पहले तो रिसेप्शन शुरू होती है। ये सच है कि झूठ है? हम पूछा भाई पहले तो शादी तो करो, पूछो तो कुछ का कुछ नेम तो है। कल तो एक मैसेज मेरे को ऐसा आया कि पहले तो 7 वचन थे, अब 8वां वचन है कि मैं व्हाट्सएप और फेसबुक से ज्यादा टाइम आपको दूंगी। ये नया शादी का वचन एक एडिशन हो गया। तो संस्कार कहां चले गए सारे? और नहीं 25-50 लाख रुपया तो कुछ भी नहीं है शादी का खर्चा। और वो पंडित से मैंने पूछा, बोला 2000 देने में इनको बुखार आता है, 50 लाख खर्च करेंगे लेकिन पंडित जी को कभी नहीं देंगे। जो संस्कार करके तुम्हारे को असल में सर्टिफिकेट देता है कि तेरी शादी हो गई, उसके लिए कुछ भी नहीं है। उस बेचारे का तो हाल ऐसा है, इसलिए क्योंकि धार्मिक व्यवहार हमने शिक्षा देने वाले जो जो सत्कर्म करने वाले साधु संत थे उनका सम्मान करना छोड़ लिया, इसलिए संसार के अंदर नराधम इतने बढ़ गए हैं कि मानव जन्म में कोई हरि कथा सुनने को तैयार ही नहीं। अब जाओ आप किसी को बोलो भगवत गीता ले लो, क्या कहेगा, क्या बोलता है? एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि जो आदमी धार्मिक अथवा कुछ सांस्कृतिक 100 रुपये के पुस्तक लेने में ना करे और 2000 रुपये का जूता ले ले उसके सर के ऊपर जूते मारने चले, वो जूते के लायक ही है। जूता के सबके पांव में देखो कितने पैसे का जूता है, हर एक का जूता 2000 से ऊपर का है। और 100 रुपये का धार्मिक या कोई सांस्कृतिक या कोई सामाजिक पुस्तक लेने में उसको इच्छा नहीं है तो इसका मतलब, ये बहुत बड़े एक विद्वान ने लिखा है कि जो जूते के ऊपर 2000 खर्च करे और धार्मिक पुस्तक के ऊपर 100 रुपये के लिए हटे वो समझ लो कि जूतों के लायक है। इसका मतलब जीवन में जूते ही खाएगा, कैसे खाएगा भगवान जाने लेकिन खाएगा जूते। तो ये देखो कि कितना बड़ा ये नराधम की पहली पहचान है असल में। नहीं मेरे पास पहले पड़ी है, तुम्हारे पास पहले होती तो इसको देख के तुम दूर से प्रणाम करते और कहते महाराज आप आ गए, भगवत गीता भगवान साक्षात हमारे घर में लाए, हम बड़े भाग्यशाली है। तुम तो उसको स्वागत करके बिठा के उसको जलपान खिलाते, कोई भगवत गीता लेके तुम्हारे दरवाजे पे आए इसका मतलब भगवान तो तुम्हारे घर में होती और तुमने पढ़ा होता तो तुम इसका सम्मान करना सीख गए होते। तुम इसका अपमान कर रहे हो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास है ही नहीं और तुम इसको लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसके ऊपर कृपा करनी। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं नराधमों के ऊपर कृपा करने के लिए चेतन महाप्रभु का अवतार हुआ और विशेष रूप से नित्यानंद ऐसे नराधम जगाई और मधाई जैसों को भी जाके कृपा देते हैं। तो आप लोगों को जाके प्रचार करने में ऐसे लोगों से ही काम पड़ता है क्योंकि 99% से ज्यादा नराधम ही है तो उसके ऊपर कृपा केवल भगवान के भक्त ही कर सकते हैं ताकि वो कैसे भी ये किताब किसी के पास पहुंच जाएगा तो वो नहीं तो उसका बेटा नहीं तो पोता किसी न किसी को काम आएगा और उसके घर में कहीं न कहीं से इसके अंदर कभी पन्ना खोल दिया तो उसका जन्म सफल हो जाएगा। लेकिन लोग नहीं लेंगे ये होना ये चाहिए कि लोग लाइन लगा के खड़े होकर हमारे को दो, 70-80 हजार का नया मोबाइल का मॉडल आता है, लोग रात को जाके लाइन लगाते हैं कि iPhone 6 लेना है, तो रात को जाके खड़े होते हैं, सुबह लेना, और उसके हर एक आदमी का नहीं तो भी 200 रुपए से भी तो रोज महीने का ज्यादा खर्चा है फोन के ऊपर बात करने का। क्यों भी कितना खर्च, मिनिमम कितना खर्चा है फोन का? हाँ, 200 से 150 से कम किसी का नहीं हो सकता, और वो 200 के हर महीने 200 भराने को तैयार है, लेकिन 200 रुपये का एक किताब जो सारी उम्र भगवान से बात मुफ्त में कर सकता है उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। देखो कितना नाराज हम वातावरण हो गया है। अगर उसको कहा जाए कि एक मोबाइल तुम्हें और दिया जा रहा है फ्री, तो एक के बजाय 2 रखेगा 3 रखेगा। अरे मोबाइल 3 पड़े हैं, तुम्हारे पास 3 गीता होगी तुम्हारे को बुखार आ जाएगा क्या? हाँ, मोबाइल 3 पड़े, एक साथ में एक इधर है, लेकिन भगवत गीता एक घर में हो, एक गाड़ी में हो और एक अपने साथ हो, तो उसमें क्या खराब है? एक तुम्हारे पास है, दूसरी रख लो, तीसरी रख लो, तो किसी और को भेंट, मित्र किसी को दे देना, अच्छी भेंट तुम ना क्यों कर रहे हो भगवान के? भगवान का कृपा तुम्हारे पास आ रही है, उसको ना करके तुम अपने आप को क्यों दुष्कृतियों के लिस्ट में खड़ा कर रहे हो? लेकिन वो नाराज हमें नहीं करेगा ऐसे, और ये हमारी ये संस्कृति हमारी बिगड़ चुकी है, नहीं तो ऐसे होता नहीं था। पहले तो कोई खुद आदमी आके प्रणाम करके कहता महाराज एक गीता का पुस्तक हो तो हमको देना, हम इसको पढ़ना चाहते हैं। पहले लोग ऐसे विनती करते थे जाके, अब घर पे आ रही है तो कोई लेने को तैयार नहीं है। तो ये नाराज हम दूसरे प्रकार के लोग हैं, वो भगवान का शरण नहीं लेते, भगवान का शरण कैसे लेंगे? भगवान के भक्तों का सम्मान करने से, और भगवान के भक्तों का क्या उद्देश्य है? भगवान की कथा सुनना, और भगवान की कथा और भगवान का कीर्तन और भगवान के पुस्तक, ये जब जहां लोग नहीं लेंगे, इसके प्रति उनका श्रद्धा नहीं होगा, सुनने की आशा नहीं होगी, तो फिर वो कैसे अपने इस स्तर से ऊपर उठेंगे? और तीसरे प्रकार के लोगों का नाम है माया पहर्त ज्ञान, माया पहर्त ज्ञान, अपहर्त ज्ञान, माया ने जिसके ज्ञान को हर लिया है। ये बड़े बड़े विद्वान होते हैं, बड़े बड़े फिलोसफर होते हैं, बड़े बड़े कथाकार होते हैं, लेकिन इनका माया ने ऐसा ज्ञान हर लिया है कि कथा भगवत गीता की करेंगे लेकिन भगवान श्री कृष्ण को उसमें से निकाल लेंगे। बोले भगवान श्री कृष्ण नहीं कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के अंदर जो ब्रह्म है वो बोल रहे हैं। कथा भागवत की करेंगे लेकिन कृष्ण का नाम लेने में परमात्मा करके ब्रह्म कह देंगे, कृष्ण नाम लेने में उनको बहुत बड़ा शर्म आएगा और कहेंगे कृष्ण नहीं वो ब्रह्म है, भगवान कहाँ अवतार लेता है, तो सब मानव था वो विशेष कुछ। तो प्रभुपाद जी ने तो पहले प्रश्न उठाया है कि अच्छे आदमी तो पहले से ही भगवान का शरण ले लेते हैं। देखो 12 महाजन भगवान के भक्त हैं, ब्रह्मा से लेकर और कपिल को पूछो, नारद को पूछो, सनकादि ऋषियों को देखो, शंकर जी को देखो, ये सब कितने बड़े महान भगवान को मानने वाले, फिर रामानुज मध्वा आचार्य, ये चेतन महाप्रभु, ये सब तो भगवान का शरण लिया। लेकिन जो असल में बुद्धिमान है नहीं, अच्छा असल में बड़े दार्शनिक है नहीं, लेकिन दार्शनिक का ढोंग कर रहे हैं केवल पेट भरने के लिए, वो भगवान का शरण नहीं लेते हैं। तो माया पहर्त ज्ञान में वो लोग आते हैं जो असल में बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े नोबल प्राइस वाले होते हैं, लेकिन जब भगवान की बात आती है तो उसको नकार देते हैं कि उसकी जरूरत नहीं है। तो इसलिए माया पहर्त का बहुत बहुत ज्यादा लोग माया पहर्त ज्ञान है। और चौथे जो है आसुरिम भावम आश्रिता, उन्होंने आसुरी भाव का शरण ले लिया है, भगवान का नहीं, आसुरी भाव का। आसुरी भाव का मतलब है कि पहले तो वो भगवान को मानते ही नहीं है, किसी को भी भगवान का अवतार मान लेते हैं, किसी को भी भगवान मानने को तैयार है लेकिन भगवान को नहीं मानने को तैयार है। ऐसे लोग तो भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई रंग नहीं है, भगवान कभी आता नहीं है, और कोई भी भगवान का अवतार हो सकता है, कोई भी भगवान है, ऐसे करके ये दुष्ट प्रकृति के लोग जो हैं, ये भी बहुत ज्यादा धर्म के नाम में भगवान का भगवान बनके खुद भगवान बनते हैं लेकिन असली भगवान को मानने को तैयार नहीं। रोज नौ रोज गया अपना नया एक भगवान बना लेते हैं। तो ये असुरी प्रवृत्ति का लोग, असुर का मतलब है भगवान की जगह लेने का प्रयास करेंगे। जैसे हरणाकश है, मैं भगवान हूँ, भगवान को पूजा मत करो, मेरी पूजा करो। तो असल में असुरी प्रवृत्ति का मतलब है जो भगवान की जगह लेना चाहता हो, भगवान को हटा के उसकी जगह लेने का जिसको इच्छा हो। तो ये जो चार प्रकार के लोग हैं, ये भगवान का शरण नहीं लेते हैं, ये दुष्कृत हैं। इनका सिर्फ इनका उद्धार कैसे हो सकता है? कैसे भी भगवान के भक्त दया करके इन लोगों को थोड़ा सा भगवान के नाम जपने के लिए अथवा भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए प्रयास करें तो ऐसे लोगों के अंदर थोड़ा परिवर्तन होना संभव है। इसलिए प्रभुपाद जी ने तो ऐसे घोर कलयुग में, कलयुग की राजधानी न्यूयॉर्क में, केवल भगवान के नाम और प्रसाद के द्वारा ऐसे लोगों का जो मानव के स्तर से भी गिरे हुए थे उनके अंदर प्रेरणा देकर भगवान की भक्ति का प्रचार किया। इसका अर्थ है कि ये संभव है कि इन दो विशेष कार्यों के द्वारा, भगवान के नाम के कीर्तन और भगवान के प्रसाद के वितरण से लोगों का मन बदल सकता है, उनका दुष्कृत स्वभाव बदल सकता है, वो सुकृत हो सकते हैं। लेकिन फिर भी ये चार प्रकार के लोग संसार में रहेंगे, ये थोड़े कम हो जाएं अगर तो संसार सुखी हो जाए। एक बार तो प्रभुपाद ने कहा जितनी दुनिया के अंदर संख्या है उसका 0.01% भी अगर भक्त बन जाए तो संसार बहुत अच्छा बन जाए, सुखी हो जाए, मालूम शांति का वातावरण बन जाए। बहुत कम लोग भी अगर भक्त हो जाएं तो भी वातावरण बहुत अच्छा हो सकता है। ऐसे लगता है कि पूरे विश्व के अंदर भविष्य में इतने ये एटॉमिक अस्त्र शस्त्र जो आधुनिक जो असला पड़ा है और ऐसे लोगों के हाथ में है जो इस श्रेणी के हैं, दुष्कृत श्रेणी के हैं, किसी दिन भी ये चल गए तो दुनिया का तीसरा बहुत बड़ा वर्ल्ड वार होने वाला, और उसमें नहीं तो भी 80% से ज्यादा लोग, 75 से ऊपर पूरी जनसंख्या समाप्त हो जाएगी दुनिया की। और ये इसको कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि ये ऐसे हालात पहले से ऐसी स्थिति में है, ऐसे 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 लोगों के पास ये ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जो जब भी यूज में आ गए तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसको किसी तरीके से रोका जा सकता है, थोड़ी देर के लिए पीछे हटाया जा सकता है, 25-50 साल के लिए, तो उसके लिए बहुत ज्यादा तीव्रता से प्रचार किया जाए तो ये काम थोड़ा पीछे हट सकता है, लेकिन ये होना तो है। और इस होने के बाद जो भगवान के भक्त होंगे वो ही केवल बचेंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं भक्तों की मैं रक्षा करता हूँ। ये भी तो महाभारत के अंदर भगवद गीता का प्रकट्य हुआ है। उसी महाभारत में इतनी बड़ी संख्या का संहार हुआ जिसमें से केवल 5 पांडव ही भगवान ने रक्षा करके बचाए। ऐसे ही महाभारत जो होने वाला है, महाभारी युग जो आत्मिक युद्ध में, उसमें बचेंगे वही चंद बचे हुए भगवान के भक्त जो फिर इस धरती के ऊपर 10,000 साल तक स्वर्ण युग का निर्माण करेंगे, लोग बड़े सुखी हो जाएंगे, फिर कलयुग अपने पांव बढ़ाएगा। तो अभी हमारे को असल में बड़ी इमरजेंसी पे ये कार्य प्रचार का करना चाहिए, पुस्तक वितरण, गीता का इस महीने में कीर्तन करना, प्रसाद वितरण करना, ये तीन ही विशेष काम अगर हम बहुत तीव्र गति से करें तो इस बहुत बड़े भयानक खतरे को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, ये संभव है। जैसे प्रभुपाद जी से कभी पूछा था, बोले तीसरी महाभारी लड़ाई को आप प्रचार करोगे तो थोड़ा टाल सकते हो, नहीं तो ये किसी वक्त भी आ सकता है। तो ये चार प्रकार के लोग भगवान का शरण नहीं देते हैं, इसलिए ये कभी भी माया के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। 16वें श्लोक को पढ़िए। चार प्रकार के लोग, उनको सुकृतिनु कहा गया, चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिन अर्जुना, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृषभा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं चार प्रकार के चतुर्विधा भजन्ते माम, विधि नहीं है विधा, चार स्तर के लोग मेरा भजन करते हैं। भजन करते हैं का मतलब मेरे शरण में आते हैं अथवा मेरे को प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, आराधना करते हैं। वो कौन है, ये कैसे हैं? ये सुकृतिना है। वो दुष्कृत थे, ये सुकृत हैं। ये इनका कार्य शुभ है, वो अशुभ करते हैं, दुष्ट दुष्ट हैं, ये सुकृत हैं। अर्जुन वो चार कौन है? पहला आर्तो, आर्त का मतलब है जो बहुत दुखी है, पीड़ा में है, रोगी है, बड़ी दुख से लाचार है और भगवान को प्रार्थना करता है कि भगवान मेरे को निरोगी काया दे दीजिए, मेरा शरीर का ये रोग मिटा दीजिए, मैं आपके शरण में आया हूं। तो पहला दुखी लोग हैं वो भगवान के शरण में जाते हैं। दूसरे हैं जिज्ञासु, इसका मतलब वो कहते हैं कि जान हम क्या काय के लिए दुनिया में आए हैं, क्या कर रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं, फिर मर रहे हैं, ये तो ऐसे ही सब दग, आखिर आने का यह उद्देश्य क्या है, क्या यही करने के लिए आए हैं? कभी विचार करके देखो ना, सबसे सभी लोग ऐसे चल रहे हैं, उनको पता नहीं है क्यों क्यों कर रहे हैं, कहां काय के लिए कर रहे हैं। सबने ऐसे किया, बड़े हुए, पढ़े, नौकरी की, पैसा कमाया, घर बनाया, शादी की, बच्चे हुए, बच्चों की शादी हुई, और फिर बस मरने की तैयारी, और फिर मरे, और फिर उसको जाके शमशान में छोड़ के आए, फिर दूसरे उसके बाद बस यही चल, इसी के लिए। तो इसका आखिर कोई काम तो होगा ना, ऐसे मशीन चलाने की जरूरत क्या? तो ऐसा कोई जिज्ञासु हो जो कहे कि आखिर जीवन का मतलब कोई और होना चाहिए, ये पशु की तरह तो भेड़ चाल चलना तो ठीक नहीं है, कोई तो उसका उद्देश्य होना चाहिए। तो ऐसे जिज्ञासु जो होते हैं वो भगवान के पास कहते हैं आखिर आपने हमारे को जन्म दिया है तो कोई तो उद्देश्य होगा। तो सत शास्त्र में उनको उनके उद्देश्य का पता लगता है कि तुम्हारा उद्देश्य जन्म मृत्यु से मुक्त होना है, तुम्हारा उद्देश्य भगवान की भक्ति करना है। तो ऐसे जिज्ञासु लोग भगवान के शरण में जाते हैं। और तीसरा है अर्थार्थी, अर्थार्थी का मतलब जिसको धन की आवश्यकता है, जो बेचारा गरीब है, पैसा नहीं है, धंधा नहीं चल रहा है, तो भगवान कृपा करो आप लक्ष्मीपति हो, हमारा निर्वाह जीवन का निर्वाह चल जाए, इतना हमारे ऊपर कृपा करो। इन दोनों शब्दों के बीच में जिज्ञासु इसलिए रखा है कि इन दोनों का काम भगवान की कृपा से जब हो जाता है तो फिर वो कहता है अरे ऐसे भगवान के बारे में और जानना चाहिए जिसने हमारे दुख का निवारण कर लिया, तो वो जिज्ञासु बन जाते हैं। इन दोनों को जिज्ञासु बनना चाहिए, ये अगर जिज्ञासु नहीं बनेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो ये कैसे भक्त हैं? ये सारे कर्म मिश्रित भक्त हैं। इनकी भक्ति में थोड़ा सा स्वार्थ है, लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं है, फिर भी भगवान इनको कहते हैं ये अच्छे हैं क्योंकि मेरे पास आते हैं। और चौथा कौन है? ज्ञानी च भर्तृषभा, ये भरत वंशियों में श्रेष्ठ चौथा ज्ञानी होता है। ज्ञानी का अर्थ है उसको ये जानकारी है कि संसार नाशवंत है, कि शरीर एक दिन हमको छोड़ना पड़ेगा, न दुनिया का धन साथ जाएगा, न कोई जन साथ जाएगा, न कुछ कमाई हुई चीज साथ जाएगी, इसलिए हमारे को ये जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि भगवान कौन है और हम यहां से जाएं तो उसको कैसे प्राप्त करें, उसको ज्ञानी कहा जाता है। तो ये चार प्रकार के लोग हैं जो भगवान कहते हैं सुकृतिन है, ये मेरा शरण लेते हैं और ये अच्छे हैं। तो चार प्रकार के कौन से? दुष्कृत कौन से हो गए? मूढ़ा, नराधम, माया प्रहृत ज्ञान और असुर। असुर जिसका ज्ञान माया ने चुरा लिया है, बड़े बड़े विद्वान लेकिन शास्त्र के ऊपर उल्टी सीधी टीकाएं लिख के स्वयं भ्रमित दूसरों को भ्रमित करते हैं। और आसुरी प्रवृत्ति के लोग भगवान की कॉम्पिटिशन में खुद भगवान बनना चाहते हैं। कौन चार प्रकार के लोग भगवान का शरण लेते हैं? पहला दुखी आरत, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी, चौथा ध्रुव महाराज अर्थार्थी भक्त था, उसको अपने पिता से ज्यादा राज चाहिए था, लेकिन माँ ने बताया, नारद ने शिक्षा दी और भगवान उसका प्राप्त कर लिया, तो अर्थार्थी भक्त द्रु महाराज कहलाता है। उदाहरण है, आर तो गजेंद्र है बेचारा, मुश्किल में पड़ गया, मगरमच्छ ने पांव को पकड़ लिया, कोई परिवार वाला साथ नहीं दे पाया, तो उस वक्त भगवान की प्रार्थना की, भगवान ने आके उसकी रक्षा की। तो ये गजेंद्र अर्थ आर्थ आर्थ भक्त है, अर्थार्थी जिज्ञासु सनक आदि ऋषि हैं, जो बैठ के कलयुग के प्रभाव को रोकने के लिए सूत गोस्वामी से भागवत सुन रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। ज्ञानियों में सुखदेव आदि चार कुमार ये ज्ञानी भक्त हैं, जो पहले से ही संसार में से तो कुछ उनको लेना देना नहीं है, फिर भी उनके मन में भगवान की भक्ति करने का इच्छा हो गई। तो चारों का उदाहरण शास्त्र में इतना ऊपर स्तर का दिया है, संसारी लोगों का उदाहरण नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद लिखते हैं शुद्ध भक्ति तो कुछ और होती है, अन्य अभिलाषा शून्यम, उसमें तो ज्ञान कर्म आदि कुछ नहीं, केवल प्रेम भक्ति होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये अच्छे हैं क्योंकि भगवान के पास जाते हैं। इनकी भक्ति कैसी है? इनकी भक्ति थोड़ी सी मिक्स भक्ति है, ये मिश्रित भक्ति है, शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन शुद्ध भक्तों का संग करेंगे तो ये भी आगे बढ़ के अच्छे भक्त बन सकते हैं। जैसे ध्रुव भक्त बन गया, चार कुमार भक्त बन गए, तो ये जिन जिन का नाम उदाहरण दिया ये सब भक्त बन गए, तो ये आगे चल के भक्त बन सकते हैं। फिर तो इसके बाद प्रश्न आएगा कि इन चारों में से कौन श्रेष्ठ है, तो चारों ही महान है, लेकिन ज्ञानी फिर भी अच्छा है क्योंकि उसने एक भक्ति का शरण ले लिया है, इसलिए ज्ञानी श्रेष्ठ है। तो ये दो श्लोक आगे आएंगे। तो किसी का प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा, तो आज के हमारे केस इस श्लोकों पर को पढ़ने से ये सीखना है पहले कि हमारे को चार जो अच्छे हैं उनकी श्रेणी में आना चाहिए, चाहे संसार में दुख हो तो भी भगवान के पास जाए, धन चाहिए तो भी भगवान के पास जाइए, दुखों से मुक्त होना है तो भी भगवान के पास जाइए, अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो भी भगवान के पास शरण लेना चाहिए, और चार प्रकार के दुष्टों के संग से बचना चाहिए और अपने आप को अच्छे तरफ में कर लेना चाहिए। तो ये सिर्फ दो चार, भगवान माया से कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं, भगवान के भक्त नहीं हो सकते हैं, और उनके ऊपर कोई भक्त कृपा करे तो उनका उद्धार हो सकता है, और चार भगवान के भक्तों के संग से अच्छे भक्त हो सकते हैं। तो हमारे को सुकृतियों की लिस्ट में होना चाहिए, भक्त हो जाए तो सुकृति अपने आप हो जाती है, लेकिन सामान्य लोगों की सुकृति करने के लिए भक्तों को उनको प्रचार करना चाहिए ताकि उनका जीवन में सुकृति हो। कहते हम किसी की सुकृति किसकी कौन बनाता है, केवल भक्त किसी की सुकृति बना सकता है। तो किसी को सुकृत करना हो तो ये भक्त आप लोग प्रचार करोगे तो किसी लोगों का जीवन बदल जाएगा, वो सुकृत हो जाएंगे, और जो भगवान के भक्त ऐसे प्रचार का कार्य करते हैं वो भगवान को बहुत प्रिय है। और भगवत गीता में तो भगवान ने कहा है कि इस मेरी भगवत गीता के संदेश को जो लोगों के सुकृत बनाने में, प्रचार करने में, सुनाने में, सुनने में लगा रहेगा वो मुझे बहुत प्रिय है। तो भगवान का प्रिय बनने का भी ये बहुत अच्छा महीना है, भगवत गीता को लोगों तक पहुंचा के लोगों को सुकृत बनाएं और भगवान के प्रिय हम बन जाएं और वो भगवान के सुकृत भक्त बन जाएं और हम भगवान के प्रिय बन जाएं, ये अच्छा मौका है। प्रयास करने से सबको सफलता मिल सकती है, लेकिन भगवान अपने लिए तो सभी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान के सेवा के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए जीवन में, तो हमारा जीवन भी सफल हो और दूसरों को भी हम सुख देने का कुछ साधन जुटा सकें। तो ये महीना अच्छा भगवद गीता के वितरण करने का महीना है, इसमें थोड़ा सा हर एक को बड़ा उत्साह के साथ इस भगवद गीता के वितरण के कार्य में, लोगों को सुकृत बनाने में, नराधमों को अच्छे इंसान बनाने में ये अच्छा काम कीजिए, ताकि रहना तो हमको इसी दुनिया में है, उठना बैठना इन्हीं के बीच में है, अगर ये कुछ अच्छे बन जाएंगे तो हमारा जीवन भी सुखी हो जाएगा, नहीं तो चारों ओर से सब ऐसे लोग रहेंगे तो हम चल कहाँ से पाएंगे। ये समस्या तो हमारा प्रचार में हमारा तो लाभ है ही, कि बाकी आने वाले पीढ़ियों का भी लाभ होगा, तो ये कार्य उत्साह के साथ करना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? ये बहुत लंबा है, अगर पढ़ते हैं तो टाइम लगेगा। किसी का कोई प्रश्न है, इसका जिज्ञासा है तो? हाँ प्रभु जी बोलिए।
हाँ जी अल्ट्रा
साउंड के द्वारा सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन कैसे नहीं पता
चलता क्या चेतना जो है उसको क्यों नहीं पता
किस चीज का जैसे घर में लड़का है लड़की है क्या करना है कौन सी बीमारी कैंसर जैसे पता कर लेता है उसको क्यों नहीं पता
चेतन को ही पता चलता है अल्ट्रासाउंड को थोड़ी पता लगता है आदमी को पता लगता है जो अल्ट्रासाउंड जानता है तो पता तो डॉक्टर को लगता है जो चेतन है मशीन को थोड़ी पता लगता है आपको पता नहीं लगेगा तो डॉक्टर को पता लगता है मशीन को पता नहीं लगता है तो असल में चेतन को पता लगता है जड़ को पता नहीं लगता है जड़ तो साधन है इससे पहले के जमाने में ये विधान आता था कि मुझे लड़का चाहिए कि लड़की चाहिए हमारे तो वैदिक शास्त्र में तो ऐसे लिखा है कि लड़का चाहिए कि लड़की चाहिए उसके लिए अपनी पूजा अलग होती थी उसका विधान अलग हुआ करता था वो तो हमको आना जाना भूल गया अभी तो हम किसी से पूछते हैं कि लड़का है लड़की अल्ट्रासाउंड डॉक्टर चेतन जानता है जड़ नहीं जानता है पहले तो आपके प्रश्न का उत्तर है कि जड़ कुछ नहीं कह सकता है जब तक चेतन उसको बनाए नहीं और उसको उसको रिपोर्ट दे नहीं तो काम तो चेतन ही करता है लेकिन हम उसको नहीं जानते हैं खुद क्योंकि हम शास्त्र से बहुत दूर चले गए अब हम भौतिक शास्त्र के ऊपर विश्वास करते हैं लेकिन आध्यात्मिक शास्त्र की शिक्षा से बहुत दूर चले गए हैं इसलिए हमको ये सब सहारा लेने की जरूरत पड़ रही है नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं थी पहले तो ऐसे नवे स्कंद भागवत में आता है कि स्वयं मनु के विवस्वान के पुत्र विवस्वत मनु ने कहा मुझे लड़का चाहिए उसकी रानी ने कहा लड़की चाहिए तो लड़की पैदा हो गई पिताजी ने कहा लड़का होना चाहिए लड़की कैसे होगी बोले तुम्हारी रानी ने कहा लड़की चाहिए नहीं बोला मेरे को लड़का चाहिए तो वशिष्ठ जी ने उसको लड़का बना दिया वो ठीक है लड़का बन जाएगा तो तुम्हें तो जो चाहिए वो बन जाएगा तो उनको तो ये विद्या थी पहले शास्त्र में गर्भाधान संस्कार करके क्या चाहिए लड़की है कि लड़का है किसका आवाहन करना है जैसे पहले देवता का आवाहन करते थे ऐसे उनको आता था लेकिन अब वो विज्ञान सारा समाप्त हो गया ये तो दुष्कृत विज्ञान है जिसमें क्यों पता लगाते हैं कि क्या हमें चाहिए वो रखेंगे नहीं चाहिए वो गिरा देंगे ये तो पापी कर्म है पाप कर्म है ये तो मशीन बता सकती है कोई साधु नहीं बता सकता ऐसा काम गलत काम क्यों बताएगा साधु ये तो उल्टा है कुछ अच्छा हो तो ऐसा ऐसी भाषा दिखाने के लिए कलयुग से पहले यदुवंश के लड़कों ने एक पेट में कपड़ा डाल के सांबा के और ऋषियों से पूछा था तो तब निकला था वो मूसल जिससे सब नाश हो गया ये तो सब नाश वाला मशीने है इसमें कोई चेतन वाला तो चेतना तो इसमें है नहीं पता लगता है ऐसा नहीं कि पता नहीं लगता है मतलब प्राय सभी नराधम है नराधम के अंतर्गत कुछ महामूर्ख हैं कुछ दुष्ट नराधम के श्रेणी क्या उसका ही डिवीजन हो जाएगी नराधम जो क्राइटेरिया प्रभुपाद नराधम का लिखा है वो है कि किसी का गर्भधान संस्कार ही नहीं होता तो क्योंकि संस्कार नहीं होता तो नराधम हो गया और फिर वो नराधम में कुछ मूढ़ होते हैं कुछ मायापरत ज्ञान होते हैं कुछ असुर होते हैं तो ऐसे भी इसको विभाजित हो सकता है मुख्य उद्देश्य उसका ये है कि मानव संस्कारहीन होता जा रहा है इसका भाव ये है कि संस्कार समाप्त हो गए हमारे पास में अब आश्चर्य लगता है रशिया के अंदर गर्भाधान संस्कार कर रहे थे हमने देखा कि ये विवाह हुआ है गर्भाधान संस्कार रशिया के भक्त गर्भाधान संस्कार का पूजा करा रहे थे हमने देखा और यहाँ जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ ये पूजा समाप्त हो गई अब वहाँ वो कर रहे थे एक मैंने देखा कि इसका गर्भाधान संस्कार कर रहे हैं इसका समंतन संस्कार कर रहे हैं उच्च संस्कार जो लिखा है तो उन्होंने शुरू कर दिया क्योंकि पता लगा है तो वो शुरू कर रहे हैं और हम यहाँ पता है तो भी उसको छोड़ रहे हैं हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की जय।